यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुन पीरावन चारि राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभा गिरवर धारे गोपी जन बल्लभा गिरवर धारे यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तेरा बनकारी यमुना तेरा बनकारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitagara Hari Ba, Hari Ba, Hari Ba, Hari Ba, Hari Ba. Jaya Jagannatha, 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 Jaya Baladeva. Jagannatha Baladeva, Jaya Baladeva, 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 Jaya Subhadra. Jaya Radha, Giridhari Radha, Giridhari Radha. Radha Giridhari Radha Giridhari Radha Dari Radha Giridhari Radha Iba Hari Ba Hari Ba Hari Ba Hari Ba Ba Hari Ba Hari Ba
सपात प्रभुंस प्रिव्राज का चरण सूत्र शास्त्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति विदान स्वामी शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार शिलेन्द्रास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत कदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा रास बिहारी श्री श्री राधा गिरधारी श्री श्री जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा जी की श्री गौर निताई की निताई गौर हरि प्रेमानंदे ऑल ग्लोरियस टू द चंबल डिवोटी ऑल ग्लोरियस टू श्री गुरु गौरांग ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायः सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम तमसलोके भक्तिर भवति नैष्ठिके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 18 श्लोक संख्या 27। इस अध्याय का नाम है राजा जजाति को जवन की पुनः प्राप्ति। श्लोक ब्लैक बोर्ड में है, आप लोग पढ़े। क्षणार्थ मनु भगवान शिष्यम व्याचष्टा भार्गव काम अश्या क्रियताम राजन न एनम त्यक्तुम इह उत्सहे। क्षणार्धमनुर्भगवान् शिष्यं व्याचष्ट भार्गव कामोश्या क्रियतां राजन् नैनं त्यक्तुमिहोत्सहे। क्षणार्धमनुर्भगवान् शिष्यं व्याचष्ट भार्गव कामोश्या क्रियतां राजन् नैनं त्यक्तुमिहोत्सहे। क्षणार्धमनुर्भगवान् शिष्यं व्याचष्ट भार्गव कामोश्या क्रियतां राजन् नैनं त्यक्तुमिहोत्सहे। क्षणार्धमनुर्भगवान् शिष्यं व्याचष्ट भार्गव कामोश्या क्रियतां राजन् नैनं त्यक्तुमिहोत्सहे।
Amen.
और कोई पढ़िए। माता जी और माता जी और पढ़िए। क्षणार्थ कुछ क्षण मन्यु क्रोध भगवान अत्यंत शक्तिशाली शिष्यम अपने शिष्य विश्वपर्वा से व्याचष्ट कहा भार्गव भृगुवंशी शुक्राचार्य काम इच्छा अस्या इस देवयानी की क्रियताम पूरी करो राजन हे राजा न नहीं एनम इस लड़की को त्यक्तुम त्यागने के लिए यह संसार में उत्सहे समर्थ हूँ। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शक्तिशाली शुक्राचार्य कुछ क्षणों तक क्रुद्ध रहे किंतु प्रसन्न हो जाने पर वृषपर्वा से कहा हे राजन देवयानी की इच्छा पूरी कीजिए क्योंकि वह मेरी पुत्री है और मैं इस संसार में न तो उसे छोड़ सकता हूँ और न उसकी उपेक्षा कर सकता हूँ। दोहराएंगे शक्तिशाली शुक्राचार्य कुछ क्षणों तक क्रुद्ध रहे किंतु प्रसन्न हो जाने पर विश्वपर्वा से कहा हे राजन देवानी की इच्छा पूरी कीजिए क्योंकि वह मेरी पुत्री है और मैं इस संसार में न उसे छोड़ सकता हूँ न उसकी उपेक्षा कर सकता हूँ। तात्पर्य कभी कभी शुक्राचार्य जैसा महापुरुष अपने पुत्र पुत्रियों की अवहेलना नहीं कर सकता क्योंकि पुत्र पुत्रियां स्वभावतः पिता पर आश्रित रहते हैं और पिता का उन पर स्नेह होता है। यद्यपि शुक्राचार्य जानते थे कि देवयानी तथा शर्मिष्ठा का झगड़ा बचकाना है लेकिन देवयानी के पिता के रूप में उन्हें अपनी पुत्री का पक्ष लेना पड़ रहा था। यद्यपि वे ऐसा करना नहीं चाहते थे किंतु स्नेह बस विवश थे। उन्होंने यह स्पष्टतः स्वीकार किया कि उन्हें राजा की कृपा की याचना नहीं करनी चाहिए। थी किंतु पुत्री स्नेह के कारण वे ऐसा करने से अपने को बचा नहीं पाए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्री गुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं तं सावधूतं परिजनहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस श्लोक में शुक्राचार्य के इस मना स्थिति के विषय में प्रकाश डाला गया है। शुक्राचार्य एक महान गुरु के पद पर थे और बड़े विद्वान और शक्तिशाली थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उनके विद्वता उनके शक्ति अनेक क्षेत्रों में उनकी जो स्थिति है उससे सभी लोग अवगत हैं। बड़े बड़े देवता भी उनके सामने नतमस्तक होते हैं। वो देवगुरु शुक्राचार्य के जो प्रतिस्पर्धा में रहते हैं और ऐसे मुख्य रूप से असुरों के गुरु हैं। जैसे देवगुरु बृहस्पति जी हैं वैसे असुरों के गुरु शुक्राचार्य हैं और बहुत शक्तिशाली हैं और अनेक विद्याओं से संपन्न है। युद्ध कला साहित्य कला ज्योतिष कला धनुर्वेद आयुर्वेद अनेक ज्ञान से अनेक जौध की कलाओं से अनेक प्रकार के विद्याओं से सुलंकृत हैं समलंकृत हैं। ऐसे शुक्राचार्य अपने शिष्य विश्वकर्मा के पास जाते हैं। चले प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि शुक्राचार्य के लिए उचित नहीं था कि अपने शिष्य के पास जाएं। एक याचना कर निवेदन करने के लिए जा रहे थे। शिष्य का कर्तव्य होता है कि वो गुरु के पास जाए, लेकिन शुक्राचार्य अपने पुत्री के व्यामोह में स्वयं जाते हैं विश्वकर्मा के पास और जा करके निवेदन करते हैं कि हे राजन हमारी पुत्री की जो इच्छा हो उसे आप पूरा कीजिए। चाणक्य पंडित लिखते हैं कि जब गुरु पुरोहित कोई लोभ से या सम्मान के लिए शिष्य के सामने झुकता है तो नीति धर्म का नाश हो जाता है। कवि ने लिखा है कि गुरु शिष्य गुरु वैद्य और मंत्री तीन अगर लोभवश या भयवश या कुछ सम्मान प्राप्त करने के लिए जब अनुकूल बोलते हैं, मंत्री राजा के अनुकूल बोलने लगे वैद्य रोगी के अनुकूल बोलने लगे और गुरु अपने शिष्य के अनुकूल बोलने लगे, शास्त्र और लोक विधान को छोड़ देता है तो समझिए कि वहां नाश होता है। तो कवि ने लिखा कि राज धर्म तन तीन का होई बेग ही नाश। राज अगर मंत्री राजा को सही मंत्रणा नहीं देता है तो राज का नाश हो जाता है। डॉक्टर जो है वैद्य डॉक्टर जो है रोगी के अनुकूल सलाह नहीं देता है, रोग के अनुसार पथ्य नहीं देता है तो रोगी का नाश हो जाता है। और गुरु जो है शिष्य को सही मार्गदर्शन नहीं देता है, शिष्य के दोष को नहीं पकड़ता है तो उस गुरु शिष्य का भी नाश हो जाता है। प्रिय बोल नहीं भय आस, प्रिय बोल नहीं भय आस। आस माने कुछ प्राप्ति के लिए, यानी तो भय से। कभी कभी राजा से मंत्री बहुत भय खाते हैं, तो मंत्री जो है राजा के मनोभाव को समझ करके वैसा सलाह दे देता है, हाँ में हाँ मिला देता है। तो ठकुर सुहाती कहते हैं, माने राजा को प्रसन्न करने के लिए उसके बात में हाँ कर देता है, या भय से यानी तो कुछ पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। सचिव वैद्य गुरु तीन ही जो, सचिव वैद्य गुरु तीन, तीन का बड़ा समाज में मर्यादा होता है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोल नहीं भया, राज धर्म तन तीन का होई दे गहिना। चाणक पंडित लिखते हैं जो गुरु होता है, गु का अर्थ होता है अंधकार, रू मने प्रकाश, जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देता है और ज्ञान का प्रकाश भर देता है, गुरु कहते हैं। गुरु का अर्थ होता है जो गर्वित होता है, जो बहुत भारी होता है, सामान्य जनता से बहुत उसका भार होता है। भार मतलब शारीरिक भार नहीं, ज्ञान से, ज्ञान में भारी होता है। ज्ञान के तराजू में तौलिए तो सबसे भारी होता है, वो गुरु होता है। गुरु का अर्थ होता है जो अपने ज्ञान से शिष्य के अज्ञान को, भ्रम को, मोह को, व्यामोह को दूर कर देता है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह को दूर कर दिया। अर्जुन जब श्री कृष्ण से भगवत गीता सुने तो अंत में कहे कि नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, मेरा जो मोह था सांसारिक पदार्थ के प्रति, अपने संबंधियों के प्रति, और हमारे अंदर जो द्वैत भाव था अहम ममेति, वो दूर हो गया है। नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादन मया च्युतः स्थितोस्मि गत संदेह कते वचनंतु। अर्जुन समर्पण किए, पूर्ण समर्पण किए कृष्ण को और बोले जो आप कहेंगे मैं स्वीकार करता हूँ। जब ऐसा गुरु कोई शिष्य का मार्गदर्शन करता है तो उसका अज्ञान दूर हो जाता है और अपने स्वरूप में, अपने ज्ञान में, अपने आत्मा के स्तर पर वो स्थिर हो जाता है। तुलसीदास एक पद में लिखते हैं कि जो गुरु शिष्य के का ठकुर सुहाती करता है और सही उसका अज्ञान दूर नहीं करता है, उसका भ्रम अज्ञान शोक मोह दूर नहीं करता है तो गुरु नहीं है। जो गुरु शिष्य धन शोक नहर है, सो गुरु घोर नरक मह पर है। शुक्राचार्य वास्तव में एक महान गुरु के पद पर हैं, लेकिन अपनी पुत्री के स्नेह से राजा के पास जाकर कहते हैं, जबकि उनके लिए यथोचित नहीं था। वो राजा को आमंत्रित कर सकते थे, बुला सकते थे, उसको दंड दे सकते थे। जैसे कोई बड़ा आदमी होता है तो वो फोन कर देता है या नहीं तो अपने अधीनस्थ लोगों के द्वारा फरमान जारी कर देता है। लेकिन शुक्राचार्य का जाना उचित नहीं था। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शुक्राचार्य इतने महान गुरु हैं, इतने महान योद्धा हैं, इतने महान अस्त्र शस्त्र के जानकार हैं, जो मृत संजीवनी के आचार्य हैं, जो ऐसी विद्या जानते हैं कि मरे हुए को भी जीवित कर सकते हैं। इसलिए बृहस्पति के पुत्र कच्छ भी उनसे मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए गया था। बृहस्पति जबकि बहुत बड़े आचार्य हैं, वो भी देवताओं के गुरु हैं, लेकिन उनका लड़का शुक्राचार्य के पास पढ़ने के लिए गया था मृत संजीवनी विद्या। कोई व्यक्ति मर गया है तो शुक्राचार्य उसको जीवित कर देते हैं। जैसे देवताओं में और असुरों में जब युद्ध हुआ था तो असुरों के जो नायक थे बलि महाराज को देवता लोग मार दिए थे, लेकिन शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या से उनको जीवित कर दिए थे। इतने महान गुरु के पद पर रहते हुए भी शुक्राचार्य राजा से निवेदन कर रहे हैं कि मेरी पुत्री देवयानी की जो इच्छा है आप उसको पूरा कीजिए, क्योंकि आपकी पुत्री ने इसका अपमान किया है। आप पीछे के श्लोक में सुन चुके हैं कि किस तरह से देवयानी और शर्मिष्ठा का झगड़ा होता है। शर्मिष्ठा विश्वकर्मा की पुत्री और देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री, एक राज पुरोहित की पुत्री है और एक राजा की पुत्री है। राजा जो राजा होता है तो उसका उसके परिवार के लोग भी राजसी ठाट बाट से रहते हैं, उनका भी सम्मान राजा जैसा किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री का लड़का है या उसका की वाइफ है तो उसको भी वैसा ही सम्मान दिया जाता है, और राजगुरु शुक्राचार्य उनको भी राजकीय सम्मान दिया जाता था। तो उनकी पुत्री भी राजा की पुत्री जैसे सम्माननीय थी। लेकिन एक छोटी सी घटना से इतना बड़ा ये हो गया। कभी कभी बच्चों में झगड़ा होता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कभी कभी बच्चे झगड़ा करते हैं छोटी छोटी बातें, तो उनके जो अभिभावक हैं वो लोग उसको इतना तूल दे देते हैं कि बहुत बड़ा समस्या हो जाता है, बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। बच्चे खेल खेल में कुछ झगड़ा करते हैं और परिवार के लोग जब उसको सीरियस ले लेते हैं बहुत बड़ा समाज में बवाल हो जाता है। तो इसके पहले आप लोग सुन चुके हैं कि किस तरह से शर्मिष्ठा ने देवयानी का वस्त्र पहन लिया था, देवयानी का वस्त्र पहना था। शर्मिष्ठा भूल से देवयानी का वस्त्र पहन लिया था। कभी कभी लोग नदी में या तालाब में स्नान, सामूहिक स्नान करने जाते हैं तो एक जगह वस्त्र निकाल देते हैं और नहाने के बाद जल्दी जल्दी में कभी कभी वस्त्र दूसरे का लोग पहन लेते हैं। कभी कभी एक जैसा ही ड्रेस होता है, कभी कभी किसी किसी का एक जैसा स्वेटर होता है, एक जैसा टोपी होता है, एक जैसा साल होता है। जैसे कभी कभी हमारे मंदिरों में एक साथ ब्रह्मचारियों के लिए स्वेटर मंगाया जाता है और एक ही साथ सबका एक तरह का साल मंगा दिया जाता है, तो भ्रम हो जाता है। कभी कभी हम लोग ले आते हैं तो एक कलर में ही ले आ देते हैं, या गमछा कभी कभी एक जैसा सबका रहता है तो कभी कभी दूसरे का गमछा ले लेते हैं, तो उसमें भी झगड़ा हो जाता है कभी कभी ब्रह्मचारियों में भी, तो हमारा गमछा क्यों ले लिया। एक जैसा है तो भूल से या कभी जल्दीबाजी में या कभी अंधेरे में ऐसा गलती होता है, तो प्राय इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि या तो लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने गए होंगे। पहले लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेते थे, औरतें भी, तो हो सकता है कि अंधेरा होगा और शर्मिष्ठा ने पहचान नहीं पाया होगा कि हमारा वस्त्र है या देवयानी का वस्त्र है, तो भूल से वो कपड़ा पहन ली थी। जब देवयानी को पता चला कि मेरा वस्त्र जो है शर्मिष्ठा ने पहन लिया है तो उसको क्रोध आ गया, बोली तुमने मेरा वस्त्र क्यों पहन लिया। ऐसे भी ब्राह्मण बहुत पूजनीय होते हैं, ब्राह्मण जो है सबसे ऊपर होते हैं, तो ब्राह्मण अपने उच्च स्थिति के चलते थोड़ा कभी कभी अहंकार में रहते हैं। तो देवयानी को भी थोड़ा अहंकार था कि मैं ब्राह्मण पुत्री हूँ और वो भी शुक्राचार्य की पुत्री हूँ। शुक्राचार्य का स्थान बहुत ऊंचा है, बड़े बड़े दंडधर भी उनके यहाँ झुकते हैं। तो देवयानी ने कहा कि तुम हमारे वस्त्र को पहन लिया जैसे यज्ञ में कोई घी रखा गया उसको कुत्ता ने खा लिया। यज्ञ के लिए हविष्यान है, घी है, उसको कुत्ता अगर कोई खा ले तो अपवित्र हो जाता है, वो फिर यज्ञ में उसको उपयोग नहीं लिया जाता है। उसी तरह तुमने मेरा वस्त्र पहन लिया है, तो उसका कहने का था कि तुम एक कुतिए की तरह हो, मेरे हिस्से का जो वस्त्र है तुमने पहन लिया है। लोग प्रायः जब उससे झगड़ा होता है तो कुत्ता कुत्ती लोग बनाते हैं, तुम कुतिया हो, तुम कुत्ते हो। तो देवयानी जो है शर्मिष्ठा को कुतिया बना रही थी, तुम कुतिए की तरह हो, तुम्हें पता नहीं है कि यह वस्तु जो है यज्ञ के लिए है। मतलब हम ब्राह्मण लोग हमेशा यज्ञ करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तुम हमारा वस्त्र अपवित्र कर दिया, तुम क्या जानती हो? जो ब्राह्मण है उनका स्थान तुम नहीं जानती हो। इस तरह से जब उसने पौरुष वचन कहा, क्रोध उत्पन्न करने वाला बात, तो शर्मिष्ठा को क्रोध आ गया। शर्मिष्ठा भी राजा की पुत्री थी वृषपर्वा की, तो बोली कि तुमको इतना अहंकार है, तुम हमारे पिता के द्वारा दिए हुए अन्न से तुम जीवित हो, तुम्हारा पिता जो है पुरोहिती कर्म करता है और हम लोग देते हैं तो तुम लोग खाते हो, तुमको इतना अहंकार है? जैसे घर में कुत्ता पाला जाता है तो मालिक के ऊपर आश्रित होता है, मालिक जब देता है तो खाता है, तो तुम्हारा पिता हमारे पिता का दुम दुलाता है, चापलूसी करता है, और तुम इतनी बड़ी बड़ी बात करती हो। अगर हम लोग न रहे तो तुम लोग कैसे जीवन धारण करोगे, क्या खाओगी, तुम्हारा पिता क्या खाएगा? राजा जो है सबका भरण पोषण करता है, चाहे वो ब्राह्मण हो या गुरु हो, कोई भी हो, तो करे कि हम लोग राजवर्ग के हैं, राजसी ठाट बाट से हम लोग रहते हैं, तुम क्या, तुम्हारे पास क्या औकात है? तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो हमारे द्वारा दिया हुआ है, ये वस्त्र भी हम लोग तुमको देते हैं। जो राजपुरोहित होते हैं वो राजा के ऊपर आश्रित होते हैं, राजा उनको सब कुछ देता है। तो विश्वकर्मा की पुत्री शर्मिष्ठा बहुत गुस्से में, जैसे सर्पिणी को गुस्सा होता है, नागिन को जब गुस्सा होता है तो फुफकार मारती है, वैसे ऊर्ध्व श्वास लेकर के देवयानी को डांटने लगती है, और इतना डांटती है कि दोनों तरफ से झगड़ा होने लगता है, फिजिकल फाइटिंग होने लगता है, मारपीट होने लगता है। जब व्यक्ति गुस्सा करता है तो पहले वाणी पर गुस्सा आता है, फिर आँख में उसका प्रभाव होता है, फिर जो है उससे भी नहीं होता है, पहले आदमी डांटता है, उसको आँख दिखाता है, उससे भी सामने वाला नहीं दबता है तो उसको मार के लिए ये करता है, आपको मार दूंगा, उस पर भी जब नहीं थमता है वो, तब मार चालू होता है। तो इस तरह से दोनों शर्मिष्ठा में और देवयानी में फिजिकल जो है शारीरिक मारपीट होने लगा, और बीच बचाव करने वाला कोई नहीं था, थे भी तो सब, जैसे शर्मिष्ठा के अनेक सहेलियां थी तो बीच में नहीं आ रही थी, देवयानी के पक्ष की भी कुछ सहेलियां थी तो वो दोनों बीच में नहीं आ रहे थे, भाई इतने बड़े 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 लोगों की पुत्री है तो बीच में कौन आएगा, कोई समझाने का प्रयास भी किया हो लेकिन दोनों समझने का नाम नहीं ले रही थी। दोनों में इतना आवेश था, इतना रोष था, और एक दूसरे के प्रति इतना क्रोध वचन दोनों उगल रही थी और अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करती, मैं श्रेष्ठ हूँ। ब्राह्मण हमेशा पूजनीय होते हैं, तो वो बोलती थी नहीं, ब्राह्मण कितना भी पूजनीय हो लेकिन उसको खाने के लिए कहाँ से आता है, राजा के द्वारा ही आता है। तो तुम कितना भी बड़ी हो लेकिन राजा के दिए हुए वस्तु पर ही तुम आश्रित हो। जैसे विदुर जी धृतराष्ट्र को व्यंग बाण से विद्ध कर रहे थे। जब विदुर जी हस्तिनापुर में गए तो धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर से ले जाना था। देखे धृतराष्ट्र के सब पुत्र मर चुके हैं, फिर भी अभी भी उनकी आसक्ति है, अभी भी वो सुख सुख से जीना चाहते हैं। और जिन पांडवों को हमेशा मारने का प्रयास किए थे उन्हीं के द्वारा पालित हो रहे हैं, उनके कृपा पर वो आश्रित हैं। तो विदुर जी अर्धरात्रि में धृतराष्ट्र के कमरे में गए और कहे कि धृतराष्ट्र विदुर को बहुत स्नेह करते थे, बहुत मानते थे और धृतराष्ट्र के सलाहकार थे विदुर जी। विदुर शास्त्र में बहुत प्रवीण थे और बहुत बड़े भक्त थे विदुर जी। तो विदुर जी देखे कि अब वृद्धावस्था में भी इनको राज शासन की सुविधाओं के प्रति आसक्ति है, अब तो इनको जंगल में जाकर भजन करना चाहिए, नहीं इनके पास राज है न कोई अपना ही है, अपने जितने से सब युद्ध में मार दिए गए और जिसने मारा है उसी के द्वारा दिए हुए रोटी से जीवन धारण किए हैं। तो विदुर जी कहे कि हे धृतराष्ट्र जी, हे भ्राता संबोधित की, हे भ्राता, जिस भीम को आप मारने का अकुत प्रयास की उसी भीम के हाथ से दी हुई रोटी से आप जीवन जीना चाहते हैं, आपकी स्थिति वैसे है जैसे घर का कुत्ता होता है, गृहपालवत। आपका स्थिति जो है कुत्ते से बेहतर नहीं है, गृहपालवत जैसे घर का पालतू कुत्ता होता है तो इसको दुत्कारता है तो दूर चला जाता है और चू चू करता है तो नजदीक आता है। कभी कुत्ता अपने स्वामी का स्वामी भक्ति करता है, कभी स्वामी मारता है तो दूर जाता है, उसको अपमान का भी ख्याल नहीं होता है। कुत्ते को अपमान करिए फिर थोड़ा बुलाइए तो फिर आ जाता है, फिर आकर पांव के नीचे हाथ पांव सिर झुकाने लगता है। कुत्ते भी प्रणाम करते हैं, आप देखें कुत्ता जो होता है दोनों आगे के पैर से प्रणाम करता है या सामने लौट जाता है, वो भी चाटुकारी करता है कुत्ता भी। तो विदुर कहते हैं कि आपकी स्थिति वैसे ही है जैसे घर का पालतू कुत्ता, आप कुत्ते से बेहतर आपका जीवन नहीं है, आपको शर्म आनी चाहिए। जिन पांडवों का आप लक्षा गृह में जलाने का प्रयास किए, विष देकर मरने का प्रयास किए, इनको छल से दूत क्रीड़ा में आपने पराजित कराया, वो जबकि पराजित नहीं हुए थे, फिर भी वो लोग सत्य का अवलंबन करते रहे और आप सदा अधर्म का अवलंबन किए। पांच पांडव हमेशा धर्म के पथ पर चलते रहे लेकिन आप और आपके पुत्र हमेशा अधर्म के ऊपर चलते रहे। और उस साधु पुरुष धृतराष्ट्र युधिष्ठिर महाराज को अपने वन में भेजा, 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, फिर भी वन से आए तो भी आप उनका आधा राज्य नहीं दिए, वो आधा राज्य देना चाहिए था, फिर भी इसमें भी युधिष्ठिर महाराज ने कहा था कि ठीक है 5 गांव दे दिए, वो भी आप नहीं दे सके। दूते तो धर्मेण जितस्य साधो सत्यावलंबस्य वनम गतस्य न याचतो दात समयेन दायम। जबकि वो लोग मांगे भी कि भाई न्याय अगर तो आधा दो। रामधारी सिंह दिनकर रश्मि रश्मि लिखते हैं, कहते हैं कि ऋषि ने संधि दूत ने अर्जुन कृष्ण को कहा, कृष्ण जो जगत गुरु हैं, जो सदैव स्वर्ग परिपूर्ण सर्वलोक महेश्वरम हैं, सर्वलोक के नाथम भगवान श्री कृष्ण को जो संधि दूत बना करके युधिष्ठिर ने भेजा था, संधि दूत बनकर भगवान आए, फिर भगवान की आदेश को भी आपने ठुकरा दिया। भगवान के आदेश को भी अगर मान लिए धृतराष्ट्र, तो उनके सब पुत्र जो है नहीं मारे जाते, वो भी राजा बने रहते, आधा आधा राज बंट गया होता, वो भी उतना भी नहीं, तो इतना बड़ा दुर्भाग्य कि पांच गांव भी नहीं दे सके। न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल पांच ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। ऋषि महाराज कहे कृष्ण से कि हे कृष्ण, अब कहीं अगर न्याय है उसके पास तो आधा राज दे दे, अगर आधा नहीं देना चाहे तो पांच गांव दे दे। वह भी दुर्योधन दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, जो था असाध साधने चला। तो भगवान कृष्ण जो असाध हैं, अनंत हैं, असीम हैं, जिनको कोई बांध नहीं सकता, उनको भी बांधने के लिए मतलब इसको अरेस्ट कर लो। ये कृष्ण जो है बहुत नौटंकी जानते हैं, वृंदावन में बहुत नौटंकी किए हैं, कहीं गाय को मार दिए हैं, कहीं घोड़ा को मारे हैं, कहीं सांप को मारे हैं, कहीं बगुला मारे हैं, कई स्त्रियों को मारे हैं। ये कोई बड़ा काम नहीं किया है। जैसे शिशुपाल कहता है कि ये कौन सा बड़ा काम किया है, गाय चराया है और सांप को मारा है, बगुला मारा है, अरिष्टासुर एक बैल को मारा है, ये घोड़ा को कैसी जो घोड़ा के रूप में था उसको मारा है, एक स्त्री पुतना को मारा है, कौन सा बड़ा काम किया है। लेकिन यह वो भूल जाता है कि जो गिरिराज को भी उठाया है, जो छोटा काम किया है लेकिन बड़ा काम भी किया है, गिरिराज को भी उठाया है और बड़े बड़े असुरों का वध किया है, जो काली नाग को भी नाथा है बिना कोई अस्त्र शस्त्र के। ब्रज में भगवान कोई अस्त्र नहीं धारण करते हैं, लेकिन शिशुपाल को केवल दोष दिखाई देता है, भगवान कृष्ण में कितना गुण है वो नहीं देख पाता है। तो भगवान जब दूत बनकर के गए तो उनका आदेश स्वीकार कर लेना चाहिए था धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को, लेकिन दोनों नहीं माने, इसलिए विनाश हो गया। अगर कोई भगवान के आदेश को या भगवान के भक्त के आदेश को नहीं मानता है, ने मनमानी करता है, तो गीता में भगवान कहते हैं न च सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः, न च सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम। न च सिद्धि, न सिद्धि को प्राप्त करता है, न भौतिक लोक और परलोक में ही सुख प्राप्त करता है, वो संसार में दुखी रहता है। जो शास्त्र और शास्त्र के जो प्रणेता भगवान हैं, सारे शास्त्र के ज्ञान के जनक भगवान हैं, ऐसे भगवान के आदेश को जो उल्लंघन कर दिया तो कैसे सुखी हो सकता है। स्वयं भगवान आकर जब मेडिटेशन कराने आए हैं तो मान लेना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं माना। इसलिए धृतराष्ट्र की स्थिति ऐसी हो गई थी कि उनके पास कुछ नहीं था। लोग गांव में कहावत कहते हैं कि रावण के पास इतने लोग थे लेकिन अंत में कोई नहीं बचा था। कोई दाह संस्कार करने वाला भी नहीं था। वैसे ही धृतराष्ट्र के पास बहुत सारे लोग थे लेकिन अंत में बेचारे को कोई नहीं था सहारा देने वाला। तो विदुर जी कहते हैं कि आप अभी भी जीना चाहते हैं, जीने की इच्छा रखते हैं, जी विषाम, जीने की आपकी अभी भी कामना है, आपको जीने का हक नहीं है। वास्तव में आप अपने इतने पुत्रों को आप मरवा दिए, इतने लोगों को निर्दोष लोगों को आपने मरवा दिया महाभारत के युद्ध में, कितने प्रभुपाद जी लिखते हैं 64 करोड़ लोग मारे गए थे, 64 करोड़ लिखते हैं प्रभुपाद जी, और कितने हाथी घोड़ा मारे गए थे, और कुछ ऐसे भी लोग मारे गए थे जिनका नाम नहीं है रिकॉर्ड में, तो इतना कुछ ऐसे भी लोग मारे गए जिनका नाम नहीं। जैसे कभी कभी भूकंप होता है, बाढ़ होता है, या बम ब्लास्ट होता है, तो कुछ लोग ऐसे भी मर जाते हैं जिनका नाम नहीं आता है, काउंटिंग में नहीं आ पाते हैं। बहुत सारे लोग मरे हैं, इतने लोगों को मार करके भी आप अमर होना चाहते हैं, आप कुत्ते से आपका बेहतर जीवन नहीं है। बहुत ऐसे पिंच किए उनको, ऐसा वैराग्य का वाक्य बोले कि धृतराष्ट्र को वैराग्य हो गया। यह वैराग्य पहले नहीं हुआ था, जब सब कुछ चौपट गया तब उनको वैराग्य होगा। आदमी को वैराग्य कब होता है, जब नाज मुई गृह संपत्ति नासी मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी। आदमी वैराग्य लेता है जब सब कुछ नहीं रहता, तब वैराग्य, पहले वैराग्य लेना चाहिए। लोग बोलते हैं कि अब कोई नहीं है तो अब सन्यास ले रहा हूँ, नहीं सब कुछ है तब सन्यास लेना चाहिए। अब घर में खाने को नहीं तो आदमी बोलता है अब सन्यास ले लिया हूँ भिक्ष मांगने के लिए। जब आपके पास सब कुछ है, सब आपकी स्थिति ठीक है, तभी भजन करना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं कि घर में स्त्री मर गई, कोई नहीं है, तो सन्यास लेकर के मधुकरी करके जीवन यापन करते हैं, जीवन यापन के लिए, भक्ति के लिए नहीं। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, संपत्ति भी नहीं है, स्त्री भी नहीं है, कोई नहीं है, आगे नाथ न पीछे पगहा। तो बोलते हैं आगे नाथ न पीछे पगहा। तो ऐसे लोग सन्यास लेते हैं तो सन्यासी नहीं माने जाते हैं, वो तो जीविका उपार्जन के लिए करते हैं। तो धृतराष्ट्र को पहले सन्यास ले लेना चाहिए था, युद्ध से पहले ही। अगर सन्यास ले लिए होते तो घर गृहस्थी का जो व्यामोह था वो दूर हो गया होता, और इतना बड़ा युद्ध भी नहीं हुआ होता। आसक्ति से इतना बड़ा युद्ध हो गया, साम्राज्य की आसक्ति के चलते कितने लोग मारे गए, और अंततः उनको कुछ मिला भी नहीं, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अगर चाहते तो सब कुछ अच्छा हो सकता था। उनका लड़का भी राजा रहता और ऋषि महाराज भी राजा रहते, भले दो राज्य हो जाता। तो कभी कभी किसी का फैक्ट्री होता है तो बंटवारा हो जाता है, तो फैक्ट्री में दो दीवाल हो जाता है। तो बांटते समय बहुत लोगों को ये होता है कि अभी हमारी फैक्ट्री में दो फाट हो गया, तो कोई कोई लोग सोचते हैं कि हमारी फैक्ट्री में दो पार्ट न हो, दो आदमी न हो, कहीं मैं मालिक बना रहा हूं। तो इसके चलते बहुत तिकड़म लोग करते हैं कि हम सार्वभौम शासक बने रहें, या हमारा जो साम्राज्य है, हमारा जो घर है, हमारा जो प्लॉट है, हमारा हमारे पास जो कुछ भी है, उसमें दूसरा कोई न आए। तो उसके प्रयास में कितना कोर्ट मुकदमा होता है, मारपीट होता है, अंततः फिर वही करना पड़ता है। अंत में सोल्यूशन जो है वही कि बांट दो। पहले लोग सोचते हैं कि हम न दें उसको, हम बांटे ना, लेकिन अंत में देना पड़ता है और ज्यादा नुकसान करके देना पड़ता है। तो धृतराष्ट्र को ये ज्ञान अगर पहले आ गया होता तो ऐसा नहीं होता। तो यहां पर जो यहाँ जो स्थिति है देवयानी और शर्मिष्ठा का, वो भी वैसी ही स्थिति है, वैसी ही आसक्ति है। देवयानी जो है अपने को अच्छा मान रही, अपने को ऊंच मान रही है, और शर्मिष्ठा अपने को उच्च मान रही है कि मैं बड़े घराने की हूं, मेरा तुम अपमान कैसे कर सकती हो, तुम तो हमारी दासी जैसी हो। जैसे दास दासी होते हैं, हमेशा अपने मालिक के अनुसार चलते हैं। मालिक जब चाहे तब उनको दंड दे सकता है, जब चाहे तब पुरस्कार दे सकता है। तो तुम्हारा काम नहीं है मुझे दंड देने का, जो शासक है वो दंड देता है। हम लोग शासक वर्ग के हैं और तुम शासित हो, हमारे द्वारा तुम्हारा तुम शासित होती हो। तुम्हारा इतना कैसे मन बढ़ गया कि तुम इस तरह की बात करती हो? तो तुम्हें अभी मैं सबक सिखाती हूँ। शर्मिष्ठा ने कहा कि तुम जानती नहीं हो मैं राजा की पुत्री हूँ और हमारे पिता के आदेश को सभी लोग मानते हैं। कोई कितना भी बड़ा हो, राजा का जो आदेश है सबको मानना पड़ता है। तो बात पे इतना बढ़ गया, अंततः शर्मिष्ठा जो है देवयानी को, अपने गुरु पुत्री को कुएं में धकेल देती है। जब स्त्रियों में झगड़ा होता है तो कभी कभी इतना झगड़ा बढ़ जाता है कि स्त्रियां कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। यहाँ तक कि झगड़ा करके अपने आप जल भी जाती हैं स्त्रियां। पुरुष भी जलते हैं लेकिन स्त्रियों में ज्यादा होता है। दो स्त्रियों में झगड़ा होता है तो कभी कभी इतना अपमान होता है किसी पक्ष का, तो स्त्री अपने आप आग लगा कर मर जाती है। बल्कि मैं क्यों नीचे रहूं, मैं क्यों कम रहूं? बात से भी कोई एक स्त्री गाली देते दूसरी नौ गाली देते, बल्कि तुम एक गाली दोगी तो मैं नौ गाली दूंगी, तुम एक चप्पल मारोगी तो मैं दस चप्पल मारूंगी। तो स्त्रियों में जब झगड़ा का कंपटीशन होता है, कंपटीशन जैसा होता है, तो पहले बाघ बचन चलता है। बचन रूपी बाण का ये होता है, दोनों तरफ से बचन बाण चलता है, फिर प्रहार चलता है, फिर झोटा झोटी होता है, फिर दांत से काटा कुटी होता है। स्त्रियां दांत से भी काटते हैं, पुरुष भी काटते हैं, लेकिन स्त्रियों में ज्यादा होता है। स्त्रियों का झगड़ा हम लोग देखे हैं, स्त्रियों का बाल होता है तो स्त्री जब यह होता है तब बाल पकड़ती है, उसका बाल पकड़ती है, उसका बाल पकड़ती है। जब दूसरा छुड़ाने का प्रयास करती है, नहीं छूटता है तो दांत काटती है दांत काटती है तो छोड़ देती है। उसे भी नहीं होता है तो कपड़ा खींचती है, कपड़ा भी खोल देती हैं स्त्रियां झगड़ा में, ऐसा होता है। तो इतना जब झगड़ा बढ़ जाता है, झगड़ा जब अपने चरम सीमा पर हो जाता है, तो धकेला धकेली मैंने ऊपर है तो धकेलने का प्रयास कर, मान लीजिए छत पर है या कोई ऊंचे स्थान पर, तो धकेलने का प्रयास, इसको धकेल देते हैं। तो यही स्थिति जो है शर्मिष्ठा और देवयानी का हो गया था। झगड़ा इतना चरम सीमा पार कर गया था कि अंत में शर्मिष्ठा जो है, शर्मिष्ठा को भी अहंकार, उसको भी अहंकार, तो शर्मिष्ठा ने कुएं में धकेल दी देवयानी को, कुएं में धकेल करके, और उसने फरमान जारी कर दिया कि किसी को नहीं कहना है और न किसी को हेल्प करना है। राजा की पुत्री है, जितने भी और भी जो सखियां थीं देवयानी पक्ष से या चाहे शर्मिष्ठा पक्ष, सबको कह दिया अगर कोई उसके पास जाएगा हेल्प करने के लिए तो मैं ठीक कर दूंगी। कोई किसी से कहेगा भी नहीं कि मैंने धकेला है। कर अगर ये बात को कोई कहता है तो मैं उसको राज से निष्कासित करा दूंगी। शर्मिष्ठा ने ऐसा कह दिया, सबको भयभीत कर दिया कि किसी को ये बात कहना नहीं है और न किसी को हेल्प करना है। तो सबको लेकर के, जैसे सेनापति अपने सैनिकों को लेकर के, जैसे विजयी सेनापति होता है तो विजय के अहंकार में अपने सैनिकों को लेकर के विजय जुलूस निकालता है, वैसे शर्मिष्ठा जो है विजय जुलूस निकालते हुए, झंडा फहराते हुए राजधानी में आती है कि मुझे विजय मिल गई है। लेकिन उसका परिणाम क्या होगा शर्मिष्ठा को मालूम नहीं था कि इतना भयंकर परिणाम होगा। कभी कभी झगड़ा होता है तो आदमी सोचता है कि मैं इसमें विजयी हूँ, मुझे विजय मिल गया, लेकिन उसका परिणाम बाद में बहुत भयंकर होता है। कभी किसी को कोई अपमानित कर देता है तो सोचता है मैं श्रेष्ठ हूँ, या कहता है कि मैं आज उसको बता दिया, आज उसको सही उसकी औकात को दिखा दिया। तो शर्मिष्ठा भी ये मन में सोच रही थी, अपने सखियों से वर्णन कर रही थी कि आज उसको अपने औकात का पता चल गया है, मैं क्या हूँ। जैसे राजधानी में आती है तो कुछ समय के बाद दैववश ये झगड़ा जो है वास्तव में दैवी इच्छा थी, दैव विधान था। ऐसा झगड़ा प्रायः नहीं होता है, कभी कभी दैवी इच्छा से भी झगड़ा होता है। वास्तव में भगवान की इच्छा से ऐसा झगड़ा हुआ था। कुएं में जब देवयानी गिरी थी तो दैव बस राजा जजाति जो है शिकार के लिए गए थे। पहले के राजा लोग शिकार करने जाते थे और जंगल में हिंसक बाघ शेर हाथी को मारते थे। कोई जंगल में बाघ है, नरभक्षी हो जाता है, या तेंदुआ आदमी को खाने लगता है, जैसे आरे कॉलोनी में आप लोगों को जानते होंगे कि हमेशा तेंदुआ आदमी को खाने लगता है। तो पहले भी शेर बाघ या अन्य जंगली जानवर जब हिंसक हो जाते थे तो राजा लोग उनका शिकार करते थे, उनको युद्ध में मार देते थे, सामने तलवार से वार करके मार देते थे, बड़े बड़े हाथियों से भी राजा लोग युद्ध करके मार देते थे। तो ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता था राजाओं को, युद्ध कला का प्रशिक्षण देने के लिए आखेट करने का छूट था। वो जंगल में हिंसक जानवरों से आमने सामने युद्ध करते थे। पहले के राजा लोग शेर के साथ कुश्ती करते थे, शेर के पंजे से पंजा मिला करके युद्ध करते थे, दंगल जैसे होता है ना। आज से मुगल काल में जो राजस्थान में बहुत ऐसे क्षत्रिय हुए जिनका इतिहास है कि शेर के साथ वो लोग कुश्ती करते थे और कुश्ती में शेर को मार देते थे। कई ऐसे राजा हुए हैं, मान सिंह, जय सिंह, माधव सिंह, बड़े बड़े राजा जो शेर को भी पराजित कर देते थे, कि उन लोगों को सिंह का टाइटल दिया जाता था। ये सिंह क्षत्रिय लोग सिंह लिखने लगे। सिंह का जो टाइटल है पहले नहीं था। पहले देखिए दशरथ महाराज, युधिष्ठिर महाराज, जनक महाराज, महाराज का टाइटल था, लेकिन लगभग मुगल काल के समय सिंह का जो है टाइटल चला। जो क्षत्रिय थे सिंह लिखने लगे, जो सिंह को पराजित कर देता था। अब तो सब लोग सिंह लिखते हैं, वो कुत्ते से भी पराजित हो जाएंगे फिर भी सिंह लिखते हैं। प्यार को देख करके भी भय हो जाता है। आजकल लोग जो है गांव में श्रृंगार होता है ना सियार, उसको भी देखकर भागते हैं, लेकिन लिखे तो सिंह लिखेंगे। सिंह है नहीं लेकिन वास्तव में हम लोग भी सिंह लिखते हैं, लेकिन सिंह मतलब वास्तव में सिंह जैसा होते थे, उनका नाम भी वैसा था और काम भी। तो जो शेर को भी पराजित कर देता था, तो बड़े बड़े राजा लोग युद्ध प्रशिक्षण के लिए, राजाओं को युद्ध करना ही पड़ता है तो इसलिए उनको प्रशिक्षण की जरूरत होती थी, तो जंगल में उनको भेजा जाता था प्रशिक्षण के लिए। आजकल शेर को देखकर लोग पिंजड़े में भी शेर को देखकर भाग जाते हैं। पिंजड़ा में जो शेर होता है, और जंगली जो शेर होता है वो बहुत भयानक होता है, बहुत विकराल होता है। जो चिड़ियाघर का शेर होता है वो तो खाए बिना बिल्कुल ही हो जाता है, लेकिन जंगल का जो शेर होता है बहुत भयानक, अगर वो बोलेगा तो उसके बोलने से भी लोगों को टट्टी पेशाब हो जाता है। जंगल में अगर शेर बोल दे तो उसका आवाज सुनकर के लोग मूर्छित हो जाते हैं, बहुत पहले की घटना है कि एक आदमी जो है जंगल में शेर को मारने के लिए मचान बना करके रात्रि में बैठा था। पेड़ के ऊपर लोग मचान बनाते थे, मंच ऊंचे पेड़ पर, और रात्रि में शेर आएगा तो उसको मारने के लिए लोग इस तरह से पेड़ पर रात्रि में प्रतीक्षा करते थे। जैसे शेर किसी गाय को मार दिया है तो शेर गाय को मार देता है, बाद में भी फिर आता है खाने के लिए। पहले तो शेर मार देता है, फिर कुछ खून पीता है, फिर बाद में फिर आकर के उसको उसका मांस खाता है। तो पहले हम लोगों के तरफ भी जो जंगल है उन जंगलों में शेर बाघ होते थे तो गाय को बैल को खा जाते थे। तो कोई कोई लोग जो बंदूक या राइफल रखते थे वो रात्रि में जिस जानवर को जहाँ खाया उसी जगह में पेड़ या कोई ऊंचे जगह पर अपना निशाना बना करके रहते थे। तो एक आदमी जो है राइफल अपना लेकर के पेड़ के ऊपर मंच बना करके बैठा था। जब रात्रि में शेर आया तो उसको देख करके कांपते कांपते उसका राइफल जो है गिर गया नीचे। वो भय से इतना कांपने लगा कि उसका राइफल और निशाना दोनों ये हो गया, चूक गया और गिरने की स्थिति में हो गया। तो जजाति महाराज आखेट करने के लिए गए थे, दैवश उनको प्यास लग गई, जैसे परीक्षित महाराज को प्यास लगी थी। तो समीप मुनि के आश्रम पर पानी के तलाश में गए थे, दैवश मुनि ध्यान में थे तो राजा को भ्रम हो गया और उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिए। इतने महान राजा भी प्यास से आहत होकर के मुनि को समझे झूठा ध्यान कर रहा है, राजा हूँ मुझे स्वागत करना चाहिए। तो जजाति महाराज को जोर से प्यास लगी थी तो पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। तो दूर एक कुएं के ऊपर गए तो देखे उसमें एक लड़की गिरी हुई है कुएं में। कुएं में कोई सपोर्ट लेकर बेचारी देवयानी इंतजार में थी, आवाज भी करती थी। तो जजाति महाराज देखे तो तुरंत अपना उत्तरी वस्त्र दिए और उसको निकालने का प्रयास किए और बाहर निकाले उसका हाथ पकड़ करके। तो जजाति से देवयानी परिचय पूछते कि आप कौन हो। जजाति पूछते कि आप कुएं में कैसे गिर गई, तो सारी घटना वो बताती है। फिर जजाति को मालूम था कि देव गुरु असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री है। तो जजाति ने कहा कि आप मेरा पानी ग्रहण किए हैं तो मैं आपसे ही विवाह करूंगी। कुएं में से उन्होंने हाथ पकड़ कर निकाला था। पानी ग्रहण का अर्थ होता है विवाह। जो पानी ग्रहण कर लेता है, किसी का हाथ थाम लेता है, मैंने उसके जीवन की सारी सुरक्षा को की जिम्मेवारी लेता है। तो देवयानी ने कहा कि आपने मेरा जीवन बचाया है, आपने मेरा पानी ग्रहण करके मुझे कुएं से निकाला है, तो वास्तव में आप ही मेरे पति हैं, आप ही मेरा विवाह होगा। और देवानी ने कहा कि आप क्षत्रिय हैं लेकिन मैं ब्राह्मण पुत्री हूँ, तो मुझे अभिशाप भी मिला है। बृहस्पति पुत्र कच्छ ने मुझे अभिशाप दिया था कि तुम्हारा विवाह ब्राह्मण से नहीं होगा, तो वही संजोग जो है यहाँ उपस्थित हो गया है। मानो जजाति महाराज ने कहा कि तुम ब्राह्मण हो मैं क्षत्रिय हूँ, कैसे विवाह होगा। तो उसने समाधान निकाला कि नहीं नहीं, मुझे श्राप भी मिला था। जब कच्छ जो है शुक्राचार्य के यहाँ पढ़ने के लिए आया था मृत संजीवनी विद्या, तो उसी समय देवयानी का प्रेम हो रहा था कच्छ से, और कच्छ से उन्हें प्रस्ताव रखा कि आप मेरे साथ विवाह करो। तो बृहस्पति पुत्र कच्छ ने कहा कि आप गुरु पुत्री हो, बहन जैसी हो, आपसे विवाह मैं कैसे कर सकता हूँ। शुक्राचार्य हमारे गुरु हैं, इनसे मैं विद्या सीख रहा हूँ, और तुम उनकी पुत्री हो तो तुम मेरी बहन जैसी हो, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। लेकिन देवयानी जो है कच्छ से विवाह करना चाहती थी, जब उसने कच्छ ने अस्वीकार कर दिया कि नहीं नहीं आप मेरी बहन जैसी हो, विवाह मैं नहीं कर सकता हूँ, तो देवयानी ने साफ दे दिया कि तुम जो भी विद्या सीखे हो वो विद्या समय पर काम नहीं आएगा तुम्हें। तो कच्छ ने भी साफ दिया कि जाओ, तुम्हारा पति कोई क्षत्रिय होगा, तुम्हारा ब्राह्मण परिवार में विवाह नहीं होगा। तो वही अभिशाप को, अभिशाप की घटना को देवयानी कह रही कि हे राजन, मेरा ऐसे भी तो विवाह ब्राह्मण में नहीं होने वाला है, कोई होगा क्षत्रिय से ही, तो आपसे ही मेरा विवाह उचित है, क्योंकि आपने मेरा पाणी ग्रहण किया है, मेरा रक्षा किया है। तो देवयानी फिर वापस शुक्राचार्य अपने पिता घर में आ जाती है और सारी घटना अपने पिता से कह रही है कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। शुक्राचार्य को बहुत गुस्सा होता है, शुक्राचार्य बहुत गुस्से में होते हैं कि इस तरह से अपमान, जो हम गुरु के पद पर हैं और हमारी पुत्री के साथ ऐसा बर्ताव हुआ है, तो और देवयानी ऐसा वर्णन कर रही थी और रो रही थी, खूब रो रही थी, तो शुक्राचार्य को बहुत क्रोध हुआ। और क्रोध में तुरंत जो है, क्रोध में आदमी का विचार, सही विचार लुप्त हो जाता है। शुक्राचार्य इतने महान लेकिन क्रोध में इतना विभूत हो गए कि खुद चल दिए विश्वकर्मा के पास। इतने क्रोध में थे कि कुछ भी कर सकते थे। क्रोध जो है, लोग बोलते ना काम क्रोध लोभ, ये नरक के तीन गेट हैं। काम क्रोध लोभ, तीन गेट से आदमी जाता है नरक में। जब क्रोध होता है तो आदमी का विवेक जो है काम नहीं करता है। तो इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि क्रोध काम ये सबसे बड़ा शत्रु है। काम ये सब, क्रोध है ये सब, रजोगुण समुद्भव, इसको ही जीतना, इसको जो जीत लेता है वही वास्तव में विजयी है, वही दिग्विजयी है, वही जितेंद्रिय है। बाह्य इंद्रियों को तो आदमी शमन दमन कर लेता है, लेकिन जो अंतःकरण में काम क्रोध लोभ मोह जो सूक्ष्म इंद्रियों से उत्पन्न होता है, इसको जो जीत लेता है वही वास्तविक में बड़ा जोता है। शुक्राचार्य जैसे बड़े ज्ञानी भी अपने दैहिक संबंध के, अपने पुत्री के अपमान को नहीं सहन कर सके। पुत्री का अपमान, इतना बड़ा अपमान, वो भी कुएं में, ये स्वाभाविक है, क्रोध किसी को भी आ सकता है। इस स्थिति में किसी को भी क्रोध आ सकता है। शुक्राचार्य का क्रोध आना स्वाभाविक भी था, और वो भी देवयानी ने ऐसा वर्णन किया था कि आपको भी बहुत उसने गाली दिया। जब किसी को कोई ये होता है तो उकसाना होता है, तो देवयानी भी जानती थी, तो अपने पिता शुक्राचार्य को खूब भड़का दी कि मेरे साथ तो की ही, आपको भी बहुत गाली दी, आपको भी उसने कुत्ता बनाया, गृहपालवत। उसने कहा कि तुम्हारा पिता तो कुत्ता की तरह है, हम लोग देते हैं तो खाता है, हम लोग का दुम हिलाता है, हम लोग जो देते हैं वही इस पर जीवन धारण किया है। तो ऐसे ऐसे उसने मर्म वचन कहा देवयानी ने कि शुक्राचार्य आग बबूला हो गए। और जब विश्वकर्मा देखे कि शुक्राचार्य बहुत गुस्से में हैं और आ रहे हैं, कभी छोटी बात के लिए आते नहीं थे, बल्कि राजा को जाना पड़ता था निवेदन करने के लिए, आज लेकिन गुरु आ रहे हैं और गुरु भी ऐसे क्रोध में आ रहे हैं, तो विश्वकर्मा इस विषम परिस्थिति को समझ करके मार्ग में आते हुए शुक्राचार्य की अगवानी किए पहले ही, और उनके चरणों में गिर गए, उनके चरण कमलों में गिर करके निवेदन करने लगे कि आप क्षमा कर दीजिए। विश्वरवा भी बहुत चतुर थे, वो समझ गए कि अगर इस समय हमारे पास इनके इनका प्रतिकार करने का कोई उपाय नहीं है, इतने क्रोध में हैं, तो इस समय उनके सामने उनके चरण में गिर जाना ही सबसे बड़ा समाधान है। कोई बहुत गुस्सा में होता है तो उसको दंडवत प्रणाम करने से गुस्सा कम हो जाता है, और सामने अगर अड़े से तो और गुस्सा बढ़ जाता है। तो बृहस्परवा बिल्कुल उनके चरण में गिर गए, निवेदन करने लगे कि जो गलती हुआ है उस गलती के लिए हम क्षमा मांग चाहते हैं। तो दंडवत प्रणाम करने से ही उनका क्रोध शांत हो गया। ऐसा कहा जाए कि जो भक्त होता है दंडवत प्रणाम करने से ही उसका क्रोध शांत हो जाता है, और जो दुष्ट प्रवृत्ति का उसका क्रोध नहीं शांत होता है। जो सज्जन होता है उसका क्रोध जल्दी खत्म हो जाता है, थोड़ा सा अनुनय विनय करने से, क्षमा मांग लेने से ही, उसके शरणागत होने से ही वो शरणागत को क्षमा कर देता है। बृहस्परवा जैसे उनके शरणागत हो गए, नतमस्तक हो गए, उनके चरणों में निवेदन करने लगे, तो शुक्राचार्य का क्रोध बिल्कुल चला गया। शुक्राचार्य एक महान भक्त हैं, लेकिन इसके ठीक विपरीत दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी होगा, उसका कितना भी अनुनय विनय करिए वो नहीं सुनता है। चाणक्य पंडित लिखते हैं कि उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये, पय पानम भुजगानम केवलम विस्वर्धनम। जो मूर्ख को उपदेश देना, उसको समझाना, उससे अनुनय विनय करने से उसका क्रोध शांत नहीं होता है। जैसे दूध बहुत सात्विक चीज होता है, लेकिन सर्प को पिलाने से और उसका विष बढ़ता है। दूध सात्विक पदार्थ है, सत्वगुण प्रदान करता है, लेकिन सर्प के लिए वही विष वर्धन का काम करता है। पय पानम भुजगानम केवलम विष वर्धनम। सर्प को आप विष, सर्प को सोचेंगे दूध पिलाएंगे तो विषधर नहीं होगा, तो नहीं और विष बढ़ता है, क्योंकि उसका स्वभाव है, उसके स्वभाव में ही ऐसा है। उसको कितना भी सर्प को आप ट्रेनिंग दीजिए, सर्प को कितना भी अच्छे से रखिए, लेकिन थोड़ा भी हाथ पांव लगेगा तो काट देता है। सर्प को कितना भी आप पालतू बनाकर रखिए, उसको बहुत अच्छा से ट्रीट कीजिए, लेकिन कभी अनजाने में आपका पांव चला गया तो काट देता है। वह यह नहीं समझेगा कि अरे भूल से पांव डाल दिया है। या गाय बैल हैं, कभी कभी गाय का पैर आदमी के पैर पड़ता तो पैर गाय उठा लेती है। हम लोग देखे होंगे, हम लोग देखे हैं, कभी अनजाने में गाय का पैर आदमी के ऊपर आ जाता है तो गाय जो है उसको वजन नहीं देती है, संभाल लेती है। सर्प के ऊपर पैर जाता है तो सर्प को यह भान नहीं होता है कि वो अनजाने से हमारा आदमी है, हमारा खिलाने पिलाने वाला, इसको नहीं काटने, वो काट देता है। एक व्यक्ति था, सर्प को पालतू बनाया था और गले में लगा करके रखता था, शिव जी जैसा। तो कभी कभी लोग जाते थे मिलने के लिए तो देखते थे उनके गले में सांप जो है, तो उस सांप के साथ खेलते थे। लेकिन वो गांजा कभी कभी पीते थे, तो एक दिन गांजा पी रहे थे और गले में सर्प पिज्जा और जो चीलम था गर्म हो गया था। चीलम में गांजा रखते हैं ना, मिट्टी का होता है। गांजा जब पी रहे थे तो पीने से आग उसमें जलता है, तो मिट्टी का जो चीलम था वो गर्म हो गया था। जैसे ही सर्प के शरीर में वो गर्म चीलम लगा, काट दिया। उसको सोचना चाहिए था कि मेरा आदमी है, गांजा पी रहा है, थोड़ा गर्म लगे, नहीं वो तुरंत काट दिया। उसी तरह दुष्ट जो है, दुष्ट लोग विचार नहीं करते हैं, वो तुरंत सांप काट दिया। जो इतना साल से उसको पालतू बनाकर गले में रखे थे, कंठहार बनाकर रखे थे, और वही मौत का कारण हो गया। तो दुष्ट आदमी से संग नहीं करना चाहिए। जैसे सर्प का संगति नहीं करना चाहिए। चाणक्य पंडित लिखते हैं कि जो घर में सांप है वो घर में कभी नहीं सोना चाहिए। मान लीजिए आपको मालूम है कि ये घर में सांप आ गया है तो उस घर में नहीं सोना चाहिए, इसलिए सर्प को लोग निकलवाते हैं, तांत्रिक बुला करके या सपेरा बुला करके निकलवाते हैं, कभी भी काट सकता है। उसी तरह दुष्ट संग में आप रहेंगे तो कभी भी आपको काट सकता है, बल्कि दुष्ट हमेशा काट सकता है। सर्प तो कभी काटता है पांव पड़ने पर या आघात होने पर, लेकिन दुष्ट जो है बार बार काटता है। इसलिए दुर्जनो परिहर्तव्यो, दुर्जन का हमेशा त्याग करना चाहिए। तुलसीदास लिखते हैं कि भगवान से प्रार्थना करते हैं मुझे दुष्ट का संग मन दीजिए, दुष्ट संग जन देहु विधाता। दुष्ट आदमी जब होता है तो अपने वाणी से भी व्यंग करता है, अपने काम से भी व्यंग करता है, अपने आचार विचार हर परिस्थिति से वो कष्ट देता है व्यक्ति को। लेकिन शुक्राचार्य वास्तव में ऐसे नहीं थे, वो महान आचार्य थे, वो तुरंत अपने शरणागत अपने शिष्य के मनोभाव को समझ करके क्षमा कर दिए और बोले, निवेदन किए कि ठीक है जो भी हो गया हो गया, अब शर्मिष्ठा की क्या इच्छा है। वो बिल्कुल बर्फ हो गए, शर्मिष्ठा को क्रोध है, इसको आप प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए, इसकी क्या इच्छा है आप पूछिए। तो शर्मिष्ठा से राजा ने कहा कि आपकी क्या इच्छा है, मैं अपने पुत्री को क्या दंड दे सकता हूँ, उसने महान अपराध किया है, आपको कुएं में ढकेल दिया है छोटे से गलती के लिए, तो आप जो कहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो देवयानी बहुत गुस्से में थी तो उसने प्रस्ताव रखा कि मेरा जहाँ भी विवाह होगा वो सहेलियों के साथ मेरी दासी बन करके रहेगी, जहाँ भी मैं जाऊंगी तो वहाँ यह दासी बनकर रहेगी। तो राजा ने तुरंत स्वीकार कर लिया, देखा कि अगर हम नहीं स्वीकार करते हैं तो बात बहुत बढ़ जाएगी। तो वही देवयानी का जहाँ विवाह हुआ जजाति महाराज से, तो शर्मिष्ठा दासी बनकर गई अपने सहेलियों के साथ। राजा की जो लड़कियाँ होती हैं उनके साथ हजारों हजार दासियाँ होती हैं, सहेलियाँ होती हैं, तो विवाह होता है तो वो भी दासी के रूप में जाती हैं। जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब देवकी का शादी हुआ वसुदेव जी से तो हजारों हजार दासियां थी। राजाओं के पास बहुत सारी दासियां होती हैं और उनके साथ भी राजा का संबंध होता था, तो उनसे जो पुत्र होते थे दासी पुत्र कहलाते थे। जैसे विदुर जी दासी पुत्र थे, अंबिका या अंबालिका, अंबिका की एक दासी थी और उसके पुत्र थे। तो पहले के जो राजा होते थे वो विवाह में उनके स्त्री के साथ अनेक दासियां भी उपहार में आती थीं। जैसे देवक ने देवकी और वसुदेव के विवाह में 400 हाथी दिया था दहेज में, और हाथियों का श्रृंगार सोने के चिन्ह से किया गया था, और 1800 घोड़े दान में दिए थे, और बहुत सारी लाखों गायें उन्होंने दहेज में दिया था। तो उसी तरह हजारों हजार सखियां दासी रूप में गई थीं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमेशा स्त्रियों की संख्या पुरुषों से ज्यादा रहती है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि स्त्रियों की संख्या पुरुषों के अपेक्षा ज्यादा होती है, इसलिए पहले प्रथा थी राजा लोग या आम लोग भी बहु विवाह करते थे, अधिक विवाह बहु पत्नी विवाह होता था। जैसे वसुदेव जी की 12 पत्नियां थीं, देवकी के अन्य बहनों से भी उनका विवाह हुआ था। आज भी बहु विवाह की प्रथा है, जैसे दशरथ महाराज की 3 रानियां थीं, तो राजाओं के पास तो होती ही थी, आम लोग भी बहुत विवाह करते थे। तो दासी के रूप में शर्मिष्ठा जो है जाती है, जजाति के हैं और देवयानी बड़े ठाट बच्चन को दासी जैसा व्यवहार करती है और शर्मिष्ठा के और भी जो सखी थी उनको भी दासी के रूप में वहाँ दासत्व स्वीकार करना पड़ा। तो इतना बड़ा संकट जो है आ गया, शर्मिष्ठा को यह भान नहीं था कि इतना मुझे दासी बनकर रहना पड़ेगा। तो विवाद में कभी कभी आदमी सोचता कि पुरस्कार मिलेगा लेकिन बहुत बड़ा घोटाला हो जाता है, बहुत बड़ा घाटा हो जाता है। आदमी सोचता कि हम झगड़ा किए हैं तो हमको बहुत लाभ हो जाएगा लेकिन बहुत बड़ा घाटा हो जाता है। इतना घाटा हुआ कि जीवन भर शर्मिष्ठा दासी बनकर रहना पड़ा। आगे की कथा आप आगे और सुनेंगे और कैसे क्या घटना होता है, कैसे जजाति को वृद्धा एक बार जब देवयानी को मालूम पड़ा कि जजाति शर्मिष्ठा से भी प्रेम करते हैं तो देवयानी को बहुत गुस्सा हुआ कि हमारी दासी बनकर आई थी लेकिन रानी बन गई है, रानी बन गई, शर्मिष्ठा तो दासी बनकर आई थी। तो देवयानी शुक्राचार्य के पास जाती और सारी घटना कहती है कि ऐसा ऐसा हो गया। उधर जजाति आते हैं मनाने के लिए देवयानी को, उसी समय शुक्राचार्य गुस्से में तुरंत साप दे दिए कि तुम वृद्ध हो जाओ, वृद्धा का उपहार मिल गया उनको। उनको अपने ससुर से दहेज में वृद्धा अवस्था मिल गया, वृद्ध हो गए। तो वृद्ध हो गए, वास्तव में शुक्राचार्य को अपने दामाद को ही वृद्ध बना दिया और उनकी लड़की युवती थी। शुक्राचार्य का दिमाग बिल्कुल काम नहीं किया उस समय, अपने दामाद को ही वृद्ध बना दिए तो लड़की जवान है तो फिर उसके लिए दूसरा पति का प्रबंध करना पड़ेगा। शुक्राचार्य का दिमाग भी ये हो गया था। तो जजाति महाराज कहे कि हे ससुर जी, आपका दामाद वृद्ध हो गया लेकिन आपकी लड़की तो अभी युवती है, आपने कैसा दहेज में अपने दामाद को क्या दहेज में दिया है। तब शुक्राचार्य का होश जो है ठिकाने में आया, अरे अरे मैंने कुछ दूसरा साप देना चाहिए, कुछ और दंड देना चाहिए था लेकिन ये जो दंड दिया ये न्याय उचित नहीं है। तब कहे जजाति से कहे कि ठीक है मैंने तो गलत कर दिया है, तुम इसको एक्सचेंज कर सकते हो, ये वृद्धावस्था को अपने पुत्रों में दे सकते हो। अगर तुम्हारा कोई पुत्र इसको लेना चाहे तो उनका युवावस्था ले सकते हो, वृद्धावस्था दे सकते हो। तो बाद में वही जजाति जो है आते हैं अपने नगर में और अपने पुत्रों से कहते हैं कि आपका नाना ने मुझे उपहार दिया है, आप ले सकते हो। तो उनके सब पुत्र गाली दिए कि आप कैसे कह रहे हैं, हम लोग अभी संसार को भोगेंगे नहीं, आप तो बहुत संसार भोग चुके हैं, अभी हम लोग तो यूथ हैं, नवयुवक हैं और हम कैसे वृद्धा ले सकते हैं, आप ही वृद्धावस्था को संभालिए, नाना जी दिया है तो आप इसके भागी हैं, हम क्यों वृद्धावस्था लेंगे। जदु महाराज के पास भी, जदु महाराज तो बहुत गाली दिए, बोले आपको धिक्कार है, अभी भी आपको संसार भोगने की कामना है, मैं इस युवावस्था से भगवान का भजन करना चाहता हूँ, मैं आपको संसार भोगने के लिए अपनी जवानी नहीं दूंगा। अंत में पुरु ने दिया, पुरु पितृभक्त थे, पिता के भक्त थे और कहे पिताजी जो आप कहिए देने के लिए तैयार हूँ। तो पुरु ने अपना युवावस्था दिया और वृद्धावस्था ले लिया, तो वही जजाति ने उनको राजा बना दिया, पुरु राजा हो गए। और यदु जो है जंगल में वैश्यवृत्ति अपना लिए, क्योंकि राज्य उनको नहीं मिला, अपने पिताजी को युवावस्था नहीं दिए थे, तो लोग कृषि गोरक्षा करने लगे, क्षत्रिय होकर के भी वैश्यवृत्ति किए, इसलिए यदु के जो डायनेस्टी में जो यादव हुए वो वैश्य कहलाते हैं लेकिन वास्तव में क्षत्रिय हैं। यदु से जो यादव वो भी क्षत्रिय ही हैं, लेकिन राज कार्य नहीं मिला तो कृषि गोरक्षा में आ गए, इसलिए वैश्य में आते हैं, लेकिन यादव भी क्षत्रिय ही क्षत्रिय वंश हैं। तो ये सारी घटनाएं आप आगे कल सुन सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रश्न का समय नहीं है। प्रश्न जो होगा आप अपने आप से पूछ लीजिएगा।